आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
वन नेशन पार्टी को मिल रहा समर्थन पॉलिन हैंसन के प्रवासन विरोधी रुख के बाद तेजी से बढ़ा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्राथमिक वोटों में रिकॉर्ड 26% तक पहुंचने के बावजूद असल बदलाव की वजह स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बढ़ती राजनीति और वैकल्पिक राजनीति की चाह है, जो ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक परिदृश्य का नया आकार दे रही है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। सेवन नेटवर्क के सनराइज कार्यक्रम में सरकार की मंत्री टान्या प्लिबसेक और वन नेशन के बार्नबी जॉयस के बीच तीखी शब्दों की जंग देखने को मिली।
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important that journalists, the Australian public more broadly, start to ask. They need to get out there with some detailed policies if they really want to be tested in the way the major parties are.
Tanya, you give us so much material. It's so easy to be a grievance party when you're the government.
Let's see yours, Barnaby. I'll be waiting for your alternative budget. All you're doing is whinging.
ये तीखी बहस रेडब्रिज के हालिया जनमत सर्वेक्षण के बाद सामने आई, जहां वन नेशन के समर्थन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह उछाल पॉलिन हैंसन के प्रवासन विरोधी रुख के कारण आया है। नए आंकड़ों के अनुसार पार्टी का समर्थन 9 अंकों की बढ़त के साथ 26% तक पहुँच गया है। वहीं पार्टी नेता पॉलिन हैंसन 38% समर्थन के साथ सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी हैं, जो कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से भी आगे है। लिबरल्स और नेशनल्स का प्राथमिक वोट, जिनका गठबंधन जनवरी के मध्य में नाटकीय ढंग से टूट गया था, 7 अंकों की गिरावट के साथ 19% पर आ गया है। इससे गठबंधन पर आपसी खींचतान खत्म करने का दबाव और बढ़ गया है। लिबरल सांसद एलेक्स हॉक का कहना है कि ये इस समय उनकी सबसे अहम प्राथमिकता है।
Little Proud is on the verge of scoring the biggest own goal on the center right of Australian politics of all time. This happened quickly. It can unhappen quickly if people are willing to put aside their personal egos.
रेडब्रिज के विश्लेषक साइमन वेल्च का कहना है कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किन वर्गों के लोग वन नेशन की ओर रुख कर रहे हैं।
The really big gains have been in Gen X and younger boomers. And particularly Gen X men and younger boomers. So there is also a gender disparity across all age demographics. There is a gender disparity.
वहीं मोनाश यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ लेक्चरर डॉक्टर बेंजामिन मॉफिट का तर्क है कि पॉलिन हैंसन ने अपने संदेश या रणनीति में वास्तव में कोई बदलाव नहीं किया है। उनका कहना है कि दरअसल ये बदलाव मतदाताओं की सोच और राजनीतिक रुझान में आए परिवर्तन से प्रेरित है।
In other words, I think it's a demand-side explanation. I think there's stuff going on contextually in terms of Bondi, in terms of the coalition, and in terms of this broader sense of dissatisfaction about the current state of Australian politics, but also economic life. Disquiet about housing, disquiet about the economy, disquiet, dissatisfaction about immigration and blaming immigrants for a lot of those housing issues that Hanson's been able to capitalize on. So I think this is really a demand side explanation rather than a supply side one. That anti-establishment vote is currently parking itself with One Nation. There's not really, I guess, a populist or anti-establishment messaging coming from the coalition.
Liberal Party के वरिष्ठ नेता जान टीहन ने खराब प्रदर्शन के लिए पूर्व गठबंधन के भीतर की अंदरूनी खींचतान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं साइमन वेल्च का कहना है कि इस तरह का रुझान लिबरल पार्टी में मौजूदा अव्यवस्था और उनके अपनाए जा रहे आर्थिक दिशा निर्देशों के खिलाफ प्रतिक्रिया भी हो सकता है।
So the Liberal Party coalition has become more the party of sort of big business rather than the party of individual aspiration. So it's a pretty fundamental thing. It's more than just some transient protest vote.
वेल्च के अनुसार वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही खेमों में ये व्यापक धारणा है कि मतदाताओं की चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक मजबूत वामपंथी जनवादी आंदोलन की कमी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विक्टोरियन सोशलिस्ट उम्मीदवार जैसे जॉर्डन वैन डेक बर्ग, जिन्हें पर्पल पिंगर्स के नाम से जाना जाता है, वामपंथ जनवाद के उभरते स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन डॉक्टर मॉफिट का मानना है कि एक स्पष्ट और संस्थागत राजनीतिक पार्टी का अभाव अब भी बना हुआ है।
On the left at the moment, we're not seeing the same kind of shift to left populism that we're seeing on the right in the shift to populism. And there's a couple of things going on there that I think. One is just that the populist left kind of movement in Australia basically doesn't have its game together in the same way that the right does. And I'm talking about sort of the communications machinery that is sitting below the surface. And that is a global machinery that is working to certainly sort of on the right of politics is really working to help that sort of right-wing populist cause. There isn't the same thing on the left at the moment.
Dr. Moffat ये भी मानते हैं कि वन नेशन का प्रदर्शन मतदान पेटियों में कभी उतना मजबूत नहीं रहा जितना कि जनमत सर्वेक्षणों में दिखाई देता है। उनके अनुसार क्रिसमस से ठीक पहले 17% से बढ़कर अब 26% तक पहुंचने वाले वन नेशन का प्राथमिक वोट पिछले चुनाव में मिले वास्तविक 6% समर्थन से 4 गुना से भी ज्यादा है। लेबर पार्टी का समर्थन सांख्यिकी रूप से स्थिर रहते हुए 34% पर बना हुआ है, जबकि ग्रीन्स का समर्थन 2 अंकों की गिरावट के साथ 11% पर रह गया है। डॉक्टर मॉफिट का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि एक स्पष्ट वामपंथी जनवादी विकल्प के अभाव में व्यवस्था के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहने वाले मतदाताओं के पास बहुत सीमित विकल्प रह जाते हैं।
Right populism, as we know, looking at the news across the world, is doing much better than left populism. Donald Trump in the US, Nigel Farage and Reform in the UK, the AfD in Germany, and so on. Left populism kind of had its heyday in Europe in the 2010s. The parties I mentioned before, Syriza, Podemos in Spain, La France Insoumise, Die Linke in Germany, have all kind of gone and went, except for the case of the French example. There's a lot of reasons for that. Bernie Sanders in the US, I should mention as well. There's a lot of reasons for that, I think, that we could get into. But it's interesting that we haven't seen that a left populist party formation in the Australian context.
SBS News से Brianna Charles और Eva Statsbaker की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।